ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, श्लोक 66। पिछले के दो श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पति देव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य धर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय में स्वभावज कर्म शब्द आए हैं और उसके पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है, उसके बाद कर्म शब्द आया है 48वें श्लोक में। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। प्रत्युत करिष्ये वचनम तब कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपर्युक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए। 3रे अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को न छोड़ने के लिए प्रकरण का प्रकरण ही कहा है कि कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और न सिद्धि होती है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है। जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधनकारक है। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है वह चोर है। कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है वह पापी पाप का ही भक्षण करता है। कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो मैं वर्ण संकरता का उत्पादक और लोकों का नाश करने वाला बनूं। ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति रहित होकर आस्तिक अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूँ तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आततायी को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला, अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। आततायन मायांतम हन्या देवा विचारयन नातताय वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने भी धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है, इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है, अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे, यही सर्वधर्मान परित्यज का तात्पर्य है। मामेकम शरणम व्रज, इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तदेकम पद निश्चित्य और यच्छ्रेय एत योरेकम पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्मयोग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। अन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ, परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। अनन्य भक्तों का योग क्षेम में वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। मामेकम शरणम व्रज, तात्पर्य है के उपाय, उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थीं, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है, अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए हो तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा, वह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। परंतु अगर तेरे में भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों की शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए, वहाँ विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य देख रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है और उसको मारने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने भगवान की शरण ले ली। पद्म पुराण में लिखा है, वरम ममैव मरणम मदभक्तो हन्यते कथम, राज्य मायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, राम वाक्यम दुजाह श्रुत्वा विस्मयादि दम ब्रुवन। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन के समान योग्यता पात्रता अधिकार आदि कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। माँ शुचह का तात्पर्य है कि मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटा बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता, ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का आश्रय यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ से होगी? कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं है। लोग भी कहेंगे तो यही देख कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर, इसको तू छोड़ दे। तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध नहीं हुए तो भी इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगत दुर्गति आदि किसी की बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक कामम अवधीरित शारदार विंदौ चरणौ ते मरणे अपि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी मैं चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। शरणागति संबंधी विशेष बात। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निर्भय होना, आचरणों की कमी होने से भीतर में भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अविद्यास्मितात् राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः स्वर सवाहि विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। तथा नते माधव तावकाः क्वचिद् भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि क पमूर्धसु प्रभो। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसे भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है, ममता मल जरी जाई। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है, भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है, द्वितीया द्वै भयम भवति। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकारी, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं हैं, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका अनातन अंश है, सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। दूसरा, निःशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है, बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यम भावी था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निःशोक रहता है, शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। राम कीन चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती, अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया तो फिर मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हैं ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाएं तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं, तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, माँ शुचः। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जा और भगवान से कह दे, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जाने। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ, हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर इंद्रियां, प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं, अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। चौथा, निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूँगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग मान लिया, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा कि यह जीव मेरा ही अंश है। इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आने आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं हैं तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत तो अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी। कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं हैं। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न किए आते हैं। इसे समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है। एक माँ के तीन लड़के थे। दो लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे। तीसरा लड़का सीधा साधा और भोला था। उनकी माँ मर गई। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल यानी अस्थियाँ गंगा जी में डाल दे, इतना काम तू कर दे। उसने कहा ठीक है। वह माँ के फूल लेकर अपने घर से चला। घर से गंगा जी 300 कोस दूर थीं। पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा, भैया गंगा जी कितनी दूर हैं। वह बोला, तुम तो 150 कोस आए हो, अभी 150 कोस गंगा जी और आगे हैं। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुँचूँगा और फिर लौटकर कब आऊँगा। ऐसे दुखी होकर उसने वे हड्डियाँ जंगल में ही फेंक दीं और गांव के पास से वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते समय गंगा जल लाते हैं। फिर वह वहाँ से पीछे चला आया और अपने गांव पहुँच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गंगा जी जाकर आता तो इतने दिनों में नहीं आ सकता था, यह गंगा जी गया ही नहीं। बड़े भाइयों ने उससे पूछा, तो गंगा जी जाकर आया है क्या। उसने कहा, हाँ गंगा जी जाकर आया हूँ। ठीक गंगा जी के ब्रह्म कुंड में फूल डालकर वहाँ से गंगा जी का यह जल लाया हूँ। ऐसे वह झूठ बोल गया। भाइयों ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिए वे चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठकर एक भाई छोटे भाई से बोला, अरे भाई तू सच्ची बात बता दे, क्या तू गंगा जी हो आया और फूल ठीक गंगा जी में डाल दिए। उसने कहा, हाँ बिल्कुल गंगा जी जाकर आया हूँ। बड़े भाई ने कहा, देख रात को स्वप्न में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को गंगा जी पहुँचाया ही नहीं, बीच में ही डालकर आ गया, अब तू ही बता माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची। छोटा भाई बोला, माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई, अर्थात 150 कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गंगा जी पहुँच जाती। इस कहानी का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद यह कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण नहीं हुआ। यह माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी ही क्यों नहीं गई, कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई, मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आए। ऐसी मान्यता से तो साधक शरणागत हो जाएगा और पूर्णता भी हो जाएगी, परंतु यह मान्यता करेगा कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा। विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ। क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण स्वभाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आई कि मैं भी तो पराई जाई, पराए घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार से माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिह परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथचिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म भी बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। रहित न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार हिए की। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है, दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे के मैले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मैले की तरफ नहीं जाती, माँ साफ करे या न करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते। परंतु मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निस्संकोच करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर किंचित भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता प्रत्युत संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काक भुशुंड जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई जिसमें लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप देकर उन्हें पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौआ बना दिया, परंतु काक भुशुंड जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब काक भुशुंड जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया, फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काक भुशुंड जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी, तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे, जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे, जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचन मात्र भी नहीं आएगा आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा, यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है, इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काक भुशुंड जी ने कहा है, भगत पक्ष हट कर रहूं दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखहुं भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है कि भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज़ अपनी होती है वह सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इन तीन बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रहती है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात कुछ प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृत्ता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भव, मन मना भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही हैं, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख संताप बार बार जन्मना मरना मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीवों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है, इसीलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग अष्टांग योग लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सबके सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियों को ठीक करें या न करें, हमें शुद्ध बनाएं या न बनाएं, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह अपने पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जय श्री राम।